تفسیر میں اسم کو حل گرا ہے.
البیلا کا مطلب ہے مست رہتے ہیں, کوئی چنتا نہیں. یہ دیش ہے ویر جوانوں کا, البیلوں کا, مستانوں کا, اس دیش کا یارو کیا کہنا. یہ تو یہاں گاتے ہیں لیکن جھوٹا گاتے ہیں. البیلا انہیں کہتے ہیں جن کو کوئی بات کی چنتا نہیں رہتی. یہاں تو بیسیوں چنتائیں رہتی ہیں منشیوں کو. واستو میں البیلے رہتے ہیں ستیگ میں دیوتائیں, جہاں دیوتاؤں کو زندگی میں کوئی پرکار کی چنتا نہیں رہتی. جیسے یہاں بابا سکھاتے ہیں چنتا تاکہ کیجئے جو انہونی ہوئے, یہاں تو گیان کے آدھار پر سب چنتائیں ختم کر دیتے ہیں. وہاں آتمک استھتی کے آدھار پر ساری چنتائیں ختم ہو جاتی ہیں, کوئی چنتا کی ضرورت نہیں. برہما دوارا جیون مکتی, ہاں مکتی. برہما داڑھی مونچھ والا نہیں, برہما کہو جگدمبا کہو ارتھ دونوں کا ایک ہی ہے. داڑھی مونچھ والے برہما کی پوجا نہیں ہوتی, مندر نہیں بنتے, مورتیاں نہیں بنتی. ضرور ان کو سفلتا ہاتھ میں نہیں لگی ہوگی. جو سدھی سوروپ بنتے ہیں, سفلتا سوروپ بنتے ہیں, ان کا گائن ہوتا ہے, ان کا پوجن ہوتا ہے. تو داڑھی مونچھ والے برہما کی بھل پوجا نہیں ہوتی ہے, مورتیاں نہیں بنتی ہیں, مندر نہیں بنتے ہیں. وہ شریر کی بات ہے, پرنتو وہی آتما شریر چھوڑنے کے بعد جب وہ کوئی ماتا کے چولے میں پرویش کرتی ہے تو جگدمبا کے روپ میں گائی پوجی جاتی ہے اور مورتیاں بھی پوجی جاتی ہیں. ماتا گرو بغیر ادھار ہو نہ سکے. ماتائیں ہی سورگ کا گیٹ کھولنے کے نمت بنتی ہیں. ان ماتاؤں میں مکھیہ ماتا ہے جگدمبا. اس لیے گائن ہے کہ برہما دوارا استھاپنا ہوتی ہے سورگ کی, باقی داڑھی مونچھ والے برہما کے دوارا برہمن دھرم کی استھاپنا ہوتی ہے. سورگ کی استھاپنا نہیں ہوتی ہے. شنکر دوارا مکتی کا مطلب ہے دنیا ہی خلاص ہو جاتی ہے بندھن والی, تو بندھن والی دنیا سے مکتی ہو جاتی ہے. شریر ہی چھوٹ جاتے ہیں جن شریروں کے آدھار پر بندھن ملتا ہے. نئی دنیا میں آتمائیں جب آتی ہیں تو شریر ستو پردان ہوتے ہیں, بندھن کی بات ہی نہیں. شریر سکھدائی ہوتے ہیں, پانچ تتو ہی سکھدائی بن جاتے ہیں. بندھن دکھدائی کا ہوتا ہے, سکھدائی کا بندھن تھوڑے کہا جاتا ہے. کیا اشارہ دے کے چھوڑ دیے؟ اشارہ دیا ہے تو اشارہ تو بتا دو.
ہاں
ہاں,
اور آندولن بھی ہو رہا ہے.
آندولن بھی ہو رہا ہے, برہمن پریوار میں بھی کرپشن چل رہا ہے. یہاں بھی آندولن ہوتے رہتے ہیں. آندولن مانے دل آندولت کرتا رہتا ہے, ایک دوسرے کو ہلاتے رہتے ہیں. بھگوان آیا ہے تو بھگوان کے گھر میں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ارے بھگوان نے تو جواب دے دیا کہ مدھوبن میں مایا آتی ہے یا نہیں آتی ہے. मधुबन में भी माया आती है। तो माया का काम है आंदोलित करना। अंतर्भाग शरीर माने मनसा के द्वारा संकल्पों से जो हम बाहर की दुनिया में घूमते हैं, मन बुद्धि बाहर चली जाती है। जब मन के अंदर एकाग्रता होती है तो अंतर्भाग नहीं कहेंगे, वाहक तब कहा जाता है जब एक जगह से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। देवताएं अंतःभाग शरीर से नहीं घूमते हैं। जब पाप कर्म करते हैं तो अंतःभाग शरीर मिलता है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। एक तारा कहते हैं उसे, एक तार होता है उसमें। एक तारा का मतलब है उनकी बुद्धि एक में ही लगी हुई है, दूसरे कोई में नहीं लगी हुई है। वो एक कौन है? 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 हाँ, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक तार में लगा हुआ है, इसलिए एक तारा दिखाया जाता है।
मुरली
विष्णु को मुरली दिखाएगा,
कृष्ण को मुरली दिखाई
जाती, कृष्ण को मुरली दिखाई जाती है। हाँ, मुरली की मीठी तान होती है। ये मीठी तान शिव ने ब्रह्मा के द्वारा बोली है। ये ऐसी मीठी तान है जो कोई को बुरी नहीं लगती। नाम दे दिया है बांसुरी, सुंदर सुर निकलते हैं। कहां नगाड़े की आवाज और कहां बांसुरी की सुरीली आवाज, बहुत अंतर पड़ जाता है। ज्ञान की मीठी मीठी वाणी जो सबको भली लगती है। शिव के मंदिर में नगाड़ा बजाया जाता है, वो बादलों की तरह गड़गड़ाहट करता है, तीखी आवाज होती है, जोर से होती है। भय पैदा करने वाली है। सबको हड़काए देती है। तो ये वाद्य यंत्र दिखाए हुए हैं, ये संगम युग के वाद्य यंत्र हैं, ज्ञान के वाद्य यंत्र हैं। दानी वरदानी और महादानी, इनका अंतर चाहिए। दानी उन्हें कहा जाता है जो खुद त्याग करता है और दूसरों को देता है। वरदानी उनको कहा जाता है जो श्रेष्ठ दान देता है। वर माना श्रेष्ठ है, दानी माने दान करने वाला। ज्ञान का दान ही वरदान है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान दान और कोई होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान भगवान से आता है। भगवान का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को देना यही बड़े से बड़ा वरदान है। और महादानी उन्हें कहा जाता है जो अपना सारा जीवन त्याग तपस्या में लगाए देते हैं, दूसरों को दान करने में ही लगाए देते हैं, अपने लिए परवाह नहीं करते हैं, उन्हें महादानी कहा जाता है। और
भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग कहते हैं कौन बाबा?
नौ ग्रह हैं। वो नौ ग्रह है, उनके अधिपतियों का नाम ग्रहों के रूप में रखा गया है। जैसे धर्म है नौ जो भगवान को फॉलो करने वाले हैं, परंतु एक जैसा फॉलो नहीं करने वाले हैं। कोई भगवान को पूरा जानते हैं, पूरा फॉलो करते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, अधूरा फॉलो करते हैं। तो राहु और शनि ये भी ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को पूरा नहीं पहचाना है। अधूरा पहचाना है, फिर भी इनके फॉलोअर्स उनको भगवान के रूप में मानते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। हैं तो आसुरी धर्म स्थापन करने वाले, ये दशाएं हैं, इनको फॉलो करने वालों के ऊपर इनकी दशाएं बैठती हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है बृहस्पति, बड़े ते बड़ा गुरु। पतियों का पति कहा जाता है, वो तो स्वयं भगवान का रूप है। और निष्कष्ट से निष्कष्ट, नीचे ते नीची दशा कही जाती है राहु की। राहु से थोड़ा अच्छा है शनिदेव, उसमें एक विशेष गुण भी है, वो दोस्ती अच्छी निभाता है। बाकी और तो अवगुण बहुत हैं, उसके राज्य में सदैव त्राहि त्राहि मची रहती है। परंतु त्राहि त्राहि करने वाले भी उसे ईश्वर के रूप में मानते हैं। भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं।
आपको बाप को बुद्धिमान बच्चे खुशी होती है।
बुद्धिमान बाप को बुद्धिमान बच्चे विशेष प्रिय हैं ऐसे नहीं आता है, ये आता है बाप को ज्ञानी तू आत्मा विशेष प्रिय है।
फिर कभी आता है कि बाप को भावना वाली बच्चे कौन से बाप को क्या
प्रिय? ज्ञानी तू आत्मा जो है वो जानकार आत्मा है, जानने वाली है असलियत को। तो जो असलियत को जानने वाले हैं वो तो भगवान को प्रिय हैं, ये तो अच्छी बात है। बाकी जो बुद्धि का कमाल दिखाते हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि बुद्धि अच्छे रास्ते पर भी चलती है और बुद्धि उल्टे रास्ते पर भी चलती है। वैज्ञानिकों की बुद्धि बहुत तीखी है, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलती है या बुरे रास्ते पर चलती है? नुकसान का काम उनकी बुद्धि ज्यादा करती है। दुनिया की जिस डाल पर बैठे हुए हैं वो डालियां ही काटने का काम उन्होंने एटम बम बना लिया। एटमिक एनर्जी उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, शक्ति से वो सारी दुनिया का ध्वंस करने के लिए तैयार बैठे हैं। निर्माण नहीं कर सकते नई दुनिया का, लेकिन ध्वंस कर सकते हैं। और भगवान क्या करता है? भगवान की बुद्धि क्या करती है? भगवान बुद्धि माने मत, भगवान जो मत हमको देते हैं, जो बुद्धि हमको देते हैं, उससे भगवान और भगवान के बच्चे क्या करते हैं? नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो कितना बड़ा फर्क हो जाता है। वो पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, सारी दुनिया का संहार करते हैं, और हम नई दुनिया का भगवान की मत पर निर्माण करते हैं। तो भगवान को कौन से बच्चे प्रिय होंगे? बच्चों में बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भगवान से लेते हैं। वैज्ञानिकों में अपनी बुद्धि है, उन्हें भगवान की दरकार नहीं है। लेकिन बुद्धि कैसी है? तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान बुद्धि है। वो तो तामसी बुद्धि होने के कारण भगवान बुद्धिमानों को पसंद नहीं करता, ज्ञानी तू आत्माओं को पसंद करता है।
गीता का भगवान स्थापित को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा ऐसा बोल रहे।
ठीक है,
इसके लिए हम बच्चे क्या करें?
क्या करें? मैदान में आ जाओ, है? सेवा के मैदान में आ जाओ। घर से शुरुआत करो, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर से लड़ाई शुरू कर दो। कोर्ट में हम जावेंगे या जिसके पास जवाब नहीं आवेगा वो जावेगा? हम पीछे पीछे जावेंगे कि आगे आगे जावेंगे? हैं? हम पीछे पीछे जावेंगे। और
इलेक्ट्रॉन में पुलिस भूमि के लिए बाप दादा ने बताया, पुलिस भूमि के लिए बाप दादा ने बताया गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और हमें कैसा बनाओ?
बाप का काम दुनियावी ज्यूरिस्ट बिंग करेंगे, जो बाप को पहचानते ही नहीं। उनके पास इतने निर्णय शक्ति नहीं है कि वो बाप को पहचान सकें और फॉलो कर सकें। वो आवाज उठाएंगे गीता की भगवान की, या ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ज्यूरिस्ट व्यंग हैं जो फैसला करके दिखाते हैं अपने मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से फैसला करके दिखाते हैं कि ये भगवान है। भगवान का असली रूप ये है और यही गीता का भगवान है। कहां से ढूंढेंगे ज्योतिष व्यंग को? बाहर की दुनिया में ढूंढेंगे या अंदर की दुनिया से मिलेंगे? ब्राह्मणों की अंदर की दुनिया में है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही कन्वर्ट होकर के देवताएं बनते हैं नंबर वार, और वो नंबर वार देवताएं ही कन्वर्ट होकर के फिर और धर्मों में कन्वर्शन होता है। तो गीता के भगवान को जानने वाले भी ब्राह्मणों की दुनिया में है नंबर वार, वो ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और
मालिक
संगम राम बाप बनता है,
बाकी सब जो राजनीतिक
जैसे धर्म के क्षेत्र में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। राम का मंदिर कहो, शिव का मंदिर कहो या नारायण का मंदिर कहो, ऐसे ही राज्य के क्षेत्र में भी जितनी भी राजाइयां संसार में फैली हुई हैं सब चलने लग पड़ेंगी। एक ही राज्य दुनिया में कायम हो जाएगा।
मिलिट्री
मिलिट्री शासन, वही मिलिट्री शासन ही, ये रूहानी मिलिट्री है हमारी, उनकी है जिस्मानी मिलिट्री और हमारी है रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री की मुख्य पावर क्या है? जिस्मानी मिलिट्री की मुख्य पावर क्या है? जिस्मानी मिलिट्री हिंसा करती है और रूहानी मिलिट्री अहिंसा का रास्ता अपनाती है। अहिंसा भी दो प्रकार की है, एक जिस्मानी और एक पवित्रता की। हम काम कटारी की हिंसा से भी बचते हैं और बचाते हैं। ये पवित्रता की पावर से दुनिया में सारे काम होते हैं। पवित्रता की पावर से ही नई दुनिया की स्थापना होगी, वाइब्रेशन से ही परिवर्तन होने लगेगा। शिवा शंकर तो एक कर दिया भक्ति मार्ग में, क्योंकि शिवा शंकर के द्वारा आकर के सारा कार्य करते हैं। लेकिन शंकर पुरुष है या स्त्री चोला है? है पुरुष चोला, और पुरुषों के लिए बताया है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो दुर्योधन दुशासन के द्वारा पतितों को पावन बनाने का कार्य संपन्न होगा या कन्याओं माताओं के द्वारा पतितों को पावन बनाने का कार्य संपन्न संभव है? कन्याएं माताएं ही निमित्त बनती हैं, क्योंकि कन्याएं माताएं प्रैक्टिकल में ज्ञान को उठाती हैं, प्रैक्टिकल में पवित्रता का निर्वहन करने वाली बनती हैं। पुरुष चाहे अपनी शक्ति से हम पवित्र बन जाएं तो नहीं बनेंगे। हाँ, कन्याएं माताएं अगर आमादा हो जाएं तो ऐसा वाइब्रेशन तैयार कर सकती हैं जिससे संसार में पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाए। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो, क्योंकि रुद्रमाला पुरुषों की है या स्त्रियों की है? पुरुषों की है। चोले से भले स्त्री चोले वाले हों तो भी जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार पुरुष के हैं या स्त्री के हैं? है? पुरुषों के हैं, इसलिए वो अकेले कामयाब नहीं हो सकते। रुद्रमाला पहले तैयार जरूर होती है परंतु कामयाब नहीं हो सकती, उन्हें प्रवृत्ति अपनानी पड़े। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं रुद्रमाला में जो पुरुष प्रवृत्ति के हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, हिंसा से बाज नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें विजयमाला का आधार लेना जरूरी है। विजयमाला निकलेगी तो प्रैक्टिकल में पवित्रता का निर्वहन करेगी और विजय संपन्न हो जाएगी। इसके लिए शास्त्रों में अंधे और लंगड़े की कहानी दिखाई गई है। विषय सागर कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, लंगड़ा उसे पार कैसे करेगा? लंगड़ा तो डूब जाएगा। जानता तो है लेकिन टांग टूटी हुई है पवित्रता की। इसलिए अंधे को आवाहन करता है, अंधा लंगड़े को आधार देता है, फिर दोनों का काम बन जाता है। तो विजयमाला के मणके हैं ज्ञान के अंधे और रुद्रमाला है पवित्रता की लंगड़ी। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान के चक्षु हैं, परंतु पवित्रता की पावर न होने के कारण विषय वैतरण नदी को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए पवित्रता मुख्य है, गंगा को आगे रखा गया है। गंगा विजयमाला का मणका है या रुद्रमाला का मणका है? काका, गंगा भी रुद्रमाला में है पहले, गंगा बीज रूप में भी है, आधार मुहूर्त में, जड़ तो बाद में बनती है। तो ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है कि जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। वो सन्यास धर्म की आत्मा है। कौन सी नदी को विशेष मानती है? गंगा नदी को विशेष मानती है। अपना मुखिया किसको मानती है? गंगा को मानती है। जो बहुत सर्वसेबल बच्चे होते हैं उनको प्यार में बाप आकर के सर पर रख लेते हैं। जैसे अष्टदेवों को आठ मणकों को सर पर रखा हुआ है, ऐसे ही गंगा को भी सर पर उठा के रखा हुआ है। गंगा निमित्त बन जाती है पतितों को पावन बनाने के लिए। तब तक शिव का साकार चोला जो पुरुष रूप में है वो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक गंगा मैदान में न निकले। वो गंगा दक्षिण भारत से नहीं निकलती है। दक्षिण भारत की आत्माएं भले निकलती हैं, भगवान को पहले पहचानती हैं, परंतु पतितों को पावन बनाने का सिलसिला शुरू नहीं होता। ये सिलसिला शुरू होता ही तब है जब उत्तर भारत से गंगा निकलती है। गंगा के पीछे पीछे सन्यासियों की मंडली निकलती है जो जन्म जन्मांतर पवित्रता को विशेष महत्व देते रहे। ये पावरफुल सन्यास धर्म की आत्माएं निकलेंगी तो तुम बच्चों अर्थात रुद्रमाला के मणकों की विजय हो जाएगी। और ये चित्र बनाए किसने हैं? ये ढेर के ढेर चित्र किसने बनवाए? ये ढेर के ढेर चित्र बनवाए हैं माया की मत पर। बाप ने कितने चित्र बनाए बनवाए? चार चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति, झाड़, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। शिव बाबा के 32 करोड़ वाला चित्र भी अच्छा है। ये मुख्य मुख्य चार छह चित्र हैं जो बाबा ने तैयार कराए थे। बाकी चित्र तो मनुष्यों की मत पर बनाए गए हैं। जिसके मन में जो आया सो बनाई दिया। आज वो चित्र छपाने वाला विष्णु पार्टी में मुखिया बना बैठा है।
भक्ति मार्ग में भगवान को जान और बलि देते।
भक्ति मार्ग में
भगवान को जानवर की बलि देते हैं।
जानवर की बलि देते हैं। देवियों को बलि चढ़ाते हैं और शिव को भी बलि चढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि भगवान जब आते हैं तो बलि चढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है। बलि चढ़ना अर्थात अर्पण में होना, समर्पण होना, तन से मन से धन से समय संपर्क और संबंधियों से अर्पण होना, माना बलि चढ़ना। देवियों पर जालियों जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। इसका मतलब जो जानवर बुद्धि है वो मां काली पर बलि चढ़ते हैं। दुर्गा पर बलि नहीं चढ़ाई जाती है, महाकाली जो चंडिका का रूप धारण करती है विनाश के निमित्त बनती है। असुर संहारिणी कही जाती है, वो असुरों का, जानवर बुद्धियों का जो पाप है उसकी बलि चढ़ाई लेती है। जैसे देवी के ऊपर बकरे की बलि चढ़ाते हैं, अर्थात मैंपन का अहंकार बलि चढ़ता है, कोई बकरे की बलि चढ़ाने की बात नहीं है। द्वापर के शुरुआत में मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी, वास्तव में मनुष्यों में जो मन का अहंकार होता है, मैं ही सब कुछ हूँ, जो करता हूँ वो मैं करता हूँ, वो मैंपन का अहंकार मनुष्यों का मन अर्पण कराया जाता है, मन से ही मनुष्य बनता है। बाकी हिंसा की तो कोई बात नहीं है, भगवान आते हैं तो कोई हिंसा थोड़े ही कराते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में शुरुआत होती है, तब दुनिया में चलता है। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं तो दुनिया वालों को भी फॉलो करना पड़ता है। क्यों नहीं असर होगा? उसका बहुत असर होगा। वहाँ तो अज्ञानी है माताएं और कन्याएं, और यहाँ तो कन्याएं माताएं ज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ है। अज्ञानी होने के कारण वो विनाश के निमित्त बनेंगे, और यहाँ तो ज्ञानी है इसलिए स्थापना के निमित्त बनेंगी, नई दुनिया का संगठन बनाएंगी। फर्क क्यों नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ प्योरिटी को महत्व नहीं दिया जाता, अपवित्रता को ही महत्व दिया जाता है। वो कन्याएं माताएं डागली पढ़ाई को ही महत्व देती है, और यहाँ कन्याएं माताएं डागली पढ़ाई को महत्व नहीं देती हैं, गॉडली पढ़ाई को महत्व देती है। इसलिए नई दुनिया का निर्माण होता है। गॉडली पढ़ाई है पवित्र बनाने वाली, और डागली पढ़ाई है डॉग एंड विचेस बनाने वाली। ईव कौन है, जगदम्बा कौन है? एक ही है तो कौन है? ब्रह्मा है। शरीरधारी के ऊपर नाम पड़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है? तो जगदम्बा शरीरधारी है या उसके अंदर प्रवेश हुई आत्मा शरीरधारी है? दूसरी बात, शुरुआत पहले रुद्रमाला के मणकों से होगी या विजयमाला के मणकों से होगी? है, बीज से पहले शुरुआत होती है। तो रुद्रमाला के मणकों में बीज हैं, उनमें एक जगदम्बा भी है। जगदम्बा ही लास्ट मणक है। और जो बीज हैं वो उतने जड़त्व में ही नहीं है, उनमें ज्यादा चैतन्यता है। रुद्रमाला का आखिरी बीज सबसे जास्ती जड़त्वमयी है, इतना जड़त्वमयी है कि वर्षों बाप का संग करने के बावजूद भी जो मुरली बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, इतनी जड़त्वमयी है। गायन बना पड़ा है। सबसे जास्ती मिलन मेला की यादगार किसकी बनती है? जगदम्बा की बनती है। 500 करोड़ आत्माओं के बीच जितना जगदम्बा ने मिलन मेला मनाया उतना और कोई ने भी। 16,000 गोपियां गाई जरूर गई हैं, लेकिन मिलन मेला सबसे जास्ती किसने मनाया? जगदम्बा ने। तो जड़त्वमयी कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? जड़त्वमयी बुद्धि। ब्रह्मा को कहेंगे है जो षष्ठी सतो प्रधान षष्ठी का पहला पत्ता है, में पांडवों का अज्ञातवास वेद में शुरू हो रहा है। और जगदम्बा रूपी पृथ्वी की धुरी चेंज होनी चाहिए, होगी। क्या इस समय से जगदम्बा एडवांस में आके, अरे जगदम्बा अभी एडवांस में नहीं है क्या? है एडवांस में तो अभी भी है, लेकिन घूंघट में है। कोई को दिखाई पड़ती है, कोई को नहीं दिखाई देती। तो क्या इसी समय से जगदम्बा एडवांस में आके राजाई शुरू करेगी और बाबा गुप्त हो जाएंगे क्या? अव्यक्त वाणी में तो बोला गया है आज से 10-12 साल पहले की अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया, दुनिया की नजर वालों से, दुनिया वालों की नजर से बाप दादा गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। 2000 के आसपास ये चली हुई अव्यक्तवाणी है। तो बाप दादा बच्चों की नजरों से गुप्त हो सकते हैं क्या? जो बाप के बच्चे हैं उन बच्चों की नजरों से बाप दादा गुप्त नहीं हो सकते, और कोई दूसरे से प्रभावित हैं तो गुप्त होना संभव है या असंभव है? संभव है।
हाँ।
मम्मा बाबा को तुम बाप दादा समझते हो मूल रूप में, नहीं तो क्यों बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो फिर? अरे तुम कौन से मम्मा बाबा की बात कर रहे हो? मम्मा बाबा तुम ब्रह्मा सरस्वती को कहते हो क्या? फिर ब्रह्मा सरस्वती के लिए नहीं बोला, बाप दादा के लिए बोला। ब्रह्मा सरस्वती नहीं, बाप दादा। बाप दादा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं। शिव बाप तो मुकर्र रथ में ही आता है।
खत्म होने वाला है ना?
2012 के बाद क्या
पांडव का अज्ञातवास खत्म होने वाला है ना? उस समय क्या होगा? तो जगदम्बा का तो प्रकाश होगा
है?
जगदम्बा उसका तो पूरी चेंज हो जाएगा। पांडव का जो अज्ञातवास उस समय तो खत्म होने वाला है ना? 12 वर्ष हो गया, 12 वर्ष
कहाँ हो गया? 12 वर्ष
98
से
बाबा तो खुद तो हो गया दुनिया के बारे में, लेकिन 12 वर्ष का ही सब होना 2012 में।
हाँ,
12 वर्ष का खत्म होने वाला है ना?
हाँ, खत्म होने वाला है, अभी हुआ तो
नहीं। उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद क्या होगा? यहाँ कोई ज्योतिषी बैठे हैं क्या?
ब्राह्मण दुनिया में क्या होगा?
ब्राह्मण की दुनिया में क्या होगा? यहाँ ज्योतिषी बैठे हैं। जब होगा तब देखा जाएगा, ड्रामा की रील खुलेगी तो हम भी देखेंगे, तुम भी देखोगे। है ठीक है। हाँ जी, क्यों? वो आत्मा सेवा नहीं कर सकती? उस आत्मा के मुकाबले प्योरिटी और देवियों में ज्यादा है क्या? सबको चैलेंज दे लेते।
भक्तिमार्ग पे शंकर का ध्यान मन का चित्र ज्यादा दिखाई देता है, शंकर पार्वती का चित्र कम दिखाई देता है।
इसका
भक्तिमार्ग में चित्रकार कोई चित्र बनाते हैं शंकर का, ध्यान मन का चित्र ज्यादा दिखाई देता है।
ध्यान में मग्न रहने वाले,
लेकिन शंकर पार्वती का चित्र कम दिखाई देता है, कम बनाते हैं।
और देवताओं के चित्र कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? और देवताओं के नंबर वार बनेंगे या नंबर वन के मुकाबले ही बनेंगे? नंबर वार ही बनेंगे। क्या क्या एक बार फिर बोलो। आज टीवी में दिखाया, मुरली में क्या बताया वो नहीं, आज टीवी में दिखाया कृष्ण का पांचजन शंख किसी गाय के सामने रखने से ही गाय दूध देने लगती है, इसका बेहद अर्थ क्या है? अरे शंख किसे कहा जाता है? है ये मुख क्या है? ये मुख ही शंख है। गीता में, महाभारत में और भागवत में पांचजन्य शंख भगवान को दिखाया है। तो जो भगवान मुख से वाणी बोलते हैं वही शंख ध्वनि है, और वो शंख ध्वनि کس کے لیے چلائی جا رہی ہے؟ ماتاؤں کنیاؤں سے ہی باپ آشا رکھتے ہیں, اور ماتاؤں کنیاؤں میں بھی مکھی ماتا کون ہے؟ جگدمبا, وہی کام دھینو گو ہے جس کے سامنے شنخ بجتا ہے تو پوتر دودھ دیتی ہے. جگدمبا یگ میں دکھائی نہیں پڑتی ایڈوانس میں, لمبا ٹائم ہو گیا لیکن اس کی چلائی ہوئی واڑیاں کیسٹس تو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ ان واڑیوں میں کوئی ایسی واڑی ہے جو بابا کی واڑی کو کراس کرنے والی ہو؟ نہیں نہیں ہے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ بھگوان باپ جو سناتے ہیں اس سنائے ہوئے کو ایکوریٹ سمجھ کر کے سنانے والی کون ہے؟ جگدمبا ہے.
آڈیو کیسٹ بھی ہے؟ آڈیو کیسٹ بھی,
آڈیو کیسٹ بھی ہیں. بابا نے بولا ہے کہ تم بچوں کو ایکوریٹ چتر نکالنا چاہیے. تو بابا ایکوریٹ چتر کا مطلب کیا ہے؟ ترمورتی کا ایکوریٹ چتر نکالنا چاہیے. جو چتر 30x40 انچ کے اویلیبل ہیں ان میں ایکوریٹ چتر ہیں ترمورتی کے, یا کوئی ایکوریٹ ہے اور کوئی انیکوریٹ ہے؟ ایک برہما کا چتر ایکوریٹ ہے اور باقی وشنو اور شنکر کا ایکوریٹ نہیں ہے, کلپنا سے بنایا ہوا چتر ہے. تو بچوں کو ڈائریکشن دیا کہ تم بچوں کو ایکوریٹ چتر نکالنا چاہیے, مانے وہی فوٹو ہونا چاہیے, وہی چہرہ مہارا دیکھنے میں آنا چاہیے جو شنکر کا سنسار میں پرسدھ ہوتا ہے. ویشنوی دیوی کا سنسار میں وہ چہرہ پرسدھ ہوتا ہے لیکن وہ چہرہ تو نہیں ہے. تو کہیں گے ابھی ایکوریٹ چتر نہیں ہے, ایکوریٹ چتر چھپانا چاہیے. تو بابا چتر چھپانے کے بعد وہ چتر صرف چھپانے کی بات ہے یا سمجھانے کی بھی بات ہے یا چرتر دکھانے کی بات ہے؟ ایکوریٹ چتر نکالنے کے لیے بولا چھپانا اور وہی چتر کر کے دکھانا وہ تو نمبر وار بعد میں ہی ہوگا. پہلے سیمپل چاہیے, سیمپل ایک ہی ہوتا ہے یا ڈھیر کے ڈھیر ہوتے ہیں؟ پہلے تو ایک ہی ہوتا ہے. بابا کوئی گیان میں چلنے والی ماتا ہے جن کے پاس بہت پیسہ بھی ہے, کپڑے بھی بہت ہیں, پرنتو کوئی ماتا گیان میں چلنے والی ہے پرنتو بہت غریب ہے, پیسہ بھی نہیں ہے, کپڑے بھی نہیں ہیں, तो जो अमीर माता है वो उन माताओं को गरीब समझकर कपड़ा पैसा आदि दे सकती है क्या? ये सर्विस है या डिसर्विस है? है क्या बोला? सर्विस है। ज्ञान
हाँ,
ज्ञान में गरीब माता चल रही है और अमीर माता भी चल रही है, तो अमीर माता गरीब माता को सहयोग डायरेक्ट करे या न करे? उस कोने में कहता है नहीं करे, इस कोने में कहता है करे। बाबा से पूछ के करे है, इनडायरेक्ट पूछे, गुप्त रूप से पूछे, गुप्त रूप से मदद करे। कैसे?
दूसरे को बताए बिना, दूसरे किसी को बताए बिना मदद कर सकता?
दूसरे किसी को बताए बिना भी करेगी तो गरीब माता के ऊपर उसका दबाव रहेगा या नहीं रहेगा? और उस दबाव का अमीर माता देह अभिमानी होने के कारण उपयोग कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो जवाब आया?
क्या जवाब आया? फिर क्या करना चाहिए?
हाँ, जो भी करना है बाप से लेन देन करना है, और कोई से हमारा लेन देन नहीं होना चाहिए। बाप से लेन देन करेंगे तो बाप देने वाला बनेगा, दूसरों से लेन देन करेंगे तो दूसरे तो उसका गलत जायजा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? बाबा कहावत है मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन मियां निराकार और बीवी साकार, तो मेल कम होता है, इसलिए काजी करना पड़ता है। बाबा ये काजी क्या होता है? काजी माने जजमेंट करने वाला जज। ओम शांति, ओम शांति।